नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और सिंगापुर ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर किए हस्ताक्षर। दोनों देश आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर सहमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में हो रहे पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअली रूप से किया संबोधित। कहा, पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 32 गुना बढ़ी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के अवसर पर 82 शिक्षकों को प्रदान करेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार। हरियाणा में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल तेज बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए पहुंचा आंध्र प्रदेश। और पेरिस पैरालंपिक खेलों के लिए आज 8वें दिन भारतीय खिलाड़ी सर्वाधिक पदक जीतने के रिकॉर्ड के बाद और पदकों के लिए उतरेंगे मैदान में। अब समाचार विस्तार से। भारत और सिंगापुर ने स्वास्थ्य और औषधि, शिक्षा और कौशल विकास, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर प्रणाली साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने पर भी सहमत हुए हैं, जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉक के बीच आज हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद यह निर्णय लिया गया। सिंगापुर में वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के विस्तार का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर का भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 160 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है और वह भारत का अग्रणी आर्थिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि भारत में तेज और सतत वृद्धि से सिंगापुर की संस्थाओं के लिए निवेश के अपार अवसर खोल दिए हैं। दोनों प्रधानमंत्री ने रक्षा और सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा की जागरूकता, शिक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ज्ञान की साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने हरित गलियारा परियोजनाओं में तेजी लाने पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने पिछले महीने सिंगापुर में हुई दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय राउंड टेबल वार्ता के निष्कर्षों पर भी चर्चा की। बातचीत में 2025 में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत आसियान संबंधों समेत आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर न केवल साझेदार देश है बल्कि हरेक विकासशील राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि देशों के बीच मंत्री स्तरीय राउंड टेबल स्थापित होना एक अनूठी पहल है। श्री मोदी ने कहा कि सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के 3.5 लाख लोग रिश्तों की मजबूत नींव है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि भारत का पहला तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र सिंगापुर में खोला जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वॉक ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की अग्रणी कंपनी AEM होल्डिंग्स लिमिटेड का दौरा किया। दोनों नेताओं को सेमीकंडक्टर की वैश्विक श्रृंखला, उसके संचालन और भारत के लिए कंपनी की योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर की सेमीकंडक्टर कंपनियों को सेमिकॉन इंडिया प्रदर्शनी में भागीदारी का निमंत्रण दिया। यह प्रदर्शनी इस महीने ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगी। दोनों प्रधानमंत्री ने कंपनी के प्रशिक्षण ले रहे उड़ीसा विश्व कौशल केंद्र के भारतीय प्रशिक्षुओं तथा इंडिया रेड्डी टैलेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत का दौरा कर चुके सिंगापुर के प्रशिक्षुओं से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी मुलाकात के। बैठक के दौरान श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच साझेदारी के लिए उनके समर्थन के लिए राष्ट्रपति का धन्यवाद दिया। सिंगापुर की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कारोबारियों ने भी भारत में निवेश के लिए श्री मोदी से मुलाकात की। इसमें ब्लैकस्टोन, सिंगापुर टेमासेक होल्डिंग्स, सेमकॉर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैपिटल लाइन इन्वेस्टमेंट, एसटी टेलीमीडिया, ग्लोबल डेटा सेंटर और सिंगापुर एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ करने के बारे में बात की। प्रधानमंत्री ने भारत में चल रहे सुधारों पर प्रकाश डाला, जिससे निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता पिछले 10 वर्षों में 32 गुना बढ़ गई और इस गति से देश की 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को संबोधित करते हुए यह बात कही। यह महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए और यह नवीकरणीय ऊर्जा में पेरिस प्रतिबद्धताओं को हासिल करने वाला पहला G20 राष्ट्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2015 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हो रहा है और बहुत कम समय में 100 देश इसके सदस्य बने हैं। यह बताता है कि इस संगठन का विकास एक विश्व एक सूर्य की परिकल्पना के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सौर ऊर्जा से संचालित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एकजुट प्रयासों पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। यह संगठन कार्बन मुक्त वातावरण के लिए एक स्थायी मार्ग के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। देशभर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। हर वर्ष 5 सितंबर को डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित करेंगी। आकाशवाणी दिल्ली से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आज शाम 4:10 से FM गोल्ड, इंद्रप्रस्थ और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशभर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि आज का दिन युवाओं के विचारों को दिशा देने में शिक्षकों की भूमिका के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान विशेष रूप से शिक्षकों के लिए खुला रहेगा। आगंतुकों की सुविधा के लिए केंद्रीय सचिवालय से राष्ट्रपति भवन तक एक मुफ्त शटल सेवा चलाई जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों में 1 अक्टूबर को मतदान होगा। उम्मीदवार 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उम्मीदवार 17 सितंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। 26 विधानसभा क्षेत्रों में 25 सितंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 126A के तहत जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान मीडिया द्वारा किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के प्रसारण को प्रतिबंधित कर दिया है। अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर में पोल परिणामों को लेकर एग्जिट पोल पर प्रतिबंध चुनाव समाप्त होने के बाद आधे घंटे तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में 18 सितंबर 2024 में होंगे। चुनाव आयोग ने आज हरियाणा राज्य विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर है जबकि नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को होगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 16 सितंबर तक वापस ले सकेंगे। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। केंद्रीय अंतर मंत्रालय दल तेज बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आंध्र प्रदेश पहुंच गया है। गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव संजीव कुमार जिंदल के नेतृत्व में एक केंद्रीय दल आज आंध्र प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर रहा है। यह दल राज्य में भारी बारिश और बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान का आकलन करेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की पहल से करों का दायरा बढ़ा है। आज चेन्नई में राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सुश्री सीतारमण ने कहा कि वस्तु और सेवा कर GST के राजस्व बंटवारे ने संघीय व्यवस्था की भावना को बरकरार रखा है। विकसित भारत के महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दृष्टि बेहतर और मजबूत देश बनाने की। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को कर व्यवस्था के बारे में भ्रामक सूचनाएं दी जाती हैं। सरकार की प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन ने देश में शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में मदद की है। MBA ने SBM ने भारत में भी परिवर्तनकारी भूमिका निभाई। यह खुलासा एक शोध पत्रिका द्वारा प्रकाशित स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर शीर्षक से कराए गए अध्ययन में हुआ। इस अध्ययन को अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बेहतर शौचालय तक पहुंच शिशु और बाल मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित स्वच्छता सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए परिवर्तनकारी बन गई है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत ने 5G सेवाओं को सबसे तेजी से लागू किया। उन्होंने कहा कि अपना 4G स्टैक बनाने की प्रक्रिया में है और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया है। बांग्लादेश में 5 सदस्यीय चुनाव आयोग ने इस्तीफा देते हुए कहा कि देश में स्थिति बदल गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अव्वल ने आज 5 सदस्यीय आयोग के इस्तीफे की घोषणा की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।